ये हमारे यहाँ जो आमतौर पर हम देखते हैं इस तरह का कोई इन्हराफ सामने आया, इस तरह गेम में सामने आया, बास त्यौहारों के बारे में उलमा ये कहते हैं और उसको जिस तरीके से अप्रोच किया जाता है, कहा जाता है जी ये गेम हराम है, पबजी किसी ने डाउनलोड किया हराम है, वैलेंटाइन के फूल किसी ने बांटे तो ये हराम है, किसी ने स्प्रे किया लाल बत्ती लगा दी तो ये हराम है। मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि जो एक आम मुसलमान है उसके जहन में जो मज़हबी लोगों का तसव्वुर बनता है वो ये है कि भाई इनको कोई चीज़ बुरी लगे तो हराम हो जाती है, कोई तफरी का पहलू किसी शख्स के लिए, मतलब अब गेम खेलना आज के ज़माने में नौजवानों की सबसे बड़ी जो मशगूलियत है वो गेम्स के अंदर होती है, आप एक गेम को जब हराम कह के बिल्कुल बंद बांध देते हैं बुराई के आगे तो सोचा ही जाता है कि शायद इससे बुराई रुक जाएगी। मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि आपकी नज़र में जो अहले इल्म उलमा हैं उनको अगर कहीं कोई इनहराफ नज़र आता है उसको रोकने के लिए ये हराम हलाल फतवे की ज़ुबान और बंद बांधने के बजाय क्या काम करना चाहिए?
मैं तो हमेशा ये उनकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ कि फतवे की ज़ुबान अब इस दुनिया में चलने की नहीं है, अब आपको तफहीम और तालीम की ज़ुबान इख्तियार करनी चाहिए। यानी अपने नौजवान मुखातबीन को ये बताइए कि किसी चीज़ के बारे में दीन क्या मिजाज पैदा करता है, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बराह रास्त बता दी हैं उनको ममनू करार दे दिया है। कई मरतबा मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो कुरान मजीद ने गिन कर हमारे सामने रख दी हैं। ज़ाहिर फवाहिश बिल्कुल हराम है, हक तलफ़ी बिल्कुल हराम है, किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती बिल्कुल हराम है, शिर्क बिल्कुल हराम है, इसी तरह बिदत बिल्कुल हराम है। ये बता दिया है कि ये पांच चीज़ें हैं जो हुर्मत की बुनियाद हैं खाने पीने की चीज़ों के अलावा। अब इनको तो इसी तरह बयान किया जाएगा, कोई पूछेगा कि हक तलफ़ी की क्या नौईयत है, यही कहा जाएगा हराम है। लेकिन जिस वक्त आप इनका कोई शायबा कहीं पाते हैं या इनके मुतल्लकात को देखते हैं तो वहाँ लोग उस तरीके से उसको रिलेट नहीं कर पाते, उसमें फिर ज़रूरी होता है कि आप तफहीम और तालीम का तरीका इख्तियार करें। और इस तरीके से हर चीज़ पर हुर्मत ही का फतवा नहीं दिया जाता, बाज़ चीज़ें सदन लज़रिया रोकी जाती हैं, यानी कहा जाता है कि बेटे भाई अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करोगे तो इसका अंदेशा है कि किसी बुराई में पड़ जाओगे। यहाँ पर भी गुफ्तगू इस तरह होनी चाहिए थी कि इस्लाम चूँकि शिर्क को एक बड़ी बुराई करार देता है और मुसलमानों से ये तवक्को की जाती है कि वो शिर्क के बारे में हसास रहें, इस दीन की बुनियादी तौहीद और उसकी दावत है, तो लोग ऐसा ना हो कि बेहिस हो जाएं इसके बारे में। यानी आज तो वो एक गेम खेलते हुए महज देख रहे हैं एक आदमी को एक बुत के सामने आदाब बजा लाते हुए या उसके सामने झुकते हुए, इस चीज़ को कहीं वो अपने लिए एक आसान सी चीज़ ना समझ लें और कल किसी मंदिर में जाके किसी की खुशनुदी के लिए किसी दोस्त के लिए वो भी हाथ इसी तरीके से जोड़ दें किसी बुत के सामने। तो ये हसासियत कायम रहनी चाहिए, तो इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए तालीम और तफहीम का तरीका इख्तियार करना ये ज़्यादा मौजू है। ये जितनी चीज़ें आपने बयान की उन सब के बारे में यही करना चाहिए। ये बिल्कुल वाज़े है कि उनमें से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत रविश का ज़रिया बन सकती हैं, गलत सोबतों में आदमी को ले जा सकती हैं, फवाहिश की तरगीब दे सकती हैं, बस उसको इसी तरह बयान भी करना चाहिए। मेरा तजुर्बा ये है कि जब आप किसी चीज़ को उसकी सही जगह पर रख के बयान करते हैं तो तब लोगों के अंदर उससे बचने का दाइया पैदा होता है। उसके बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देना, ख़ास तौर पर इतलाकी चीज़ों में हराम हलाल, मैंने देखा है कि इमाम मालिक जलीलुल कदर फकी हैं, सबसे पहली बाकायदा तसनीफ़ उनकी जो मुसलमानों में राइज हुई, जिसको ये इज़्ज़त हासिल हुई कि मुसलमानों के उस वक्त के हुक्मरानों ने कहा कि हम इसको ममलकत में राइज कर देते हैं, मामूली चीज़ नहीं है ये, तो उसमें अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में वो कहते हैं अना अकरा अना ओहिब, मैं इसको पसंद करता हूँ मैं इसको नापसंद करता हूँ। तो इस तरह के अल्फाज इख्तियार करने चाहिए जिससे हुर्मत हिल्लत की फहरिस्त वो तासुर न पैदा कर दे जो पैदा हो जाता है, और उसलूब तफहीम और तालीम का होना चाहिए, बात समझाई जाएगी उसकी तालीम दी जाएगी। जिस वक्त मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए शिर्क एक कितनी बड़ी बुराई है, अब उसके बाद मुझे बताना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें अपनी ज़ात में शिर्क नहीं है। वो आदमी बैठा हुआ है खेल खेल रहा है, उसने किसी शिर्क का इर्तकाब नहीं किया, लेकिन उसके सामने बार बार उसकी तरफ से शिर्क का इर्तकाब करने वाली एक तस्वीर आ रही है, तो ये कहीं तुम्हें बेहस ना कर दे इस मामले में, तुम्हारी ज़ात में ये बेहसी पैदा हो के कहीं अगली नस्ल को मुंतकिल ना हो जाए, आप ये पूरी बात बयान कर दीजिए, तो फिर उसके बाद लोग खुद ब खुद इस चीज़ को समझने लग जाएंगे, आपको फतवा देने की ज़रूरत नहीं होती। तो उलमा की खिदमत में यही अर्ज़ किया जाता है کہ وہ اطلاقی چیزوں میں فتوے کی زبان سے اجتناب کریں، تفہیم اور تعلیم کی زبان اپنائیں جس میں استدلال سے کسی چیز کی غلطی واضح کی جائے اور اس کو اتنا ہی رکھ کر بیان کیا جائے جو اس کی فی الواقع حیثیت ہے.